मनुष्य लोग में यह प्रकृत का या पापों का जो भी हम कमाएंगे अच्छा होगा यह केवल मनुष्य योग्य होता है, देव योग्य तो कर्म योग होता है, केवल जो हमारे संस्कार रखते उनका भोग होता है और उसी प्रकार प्रियम योगियों में मनुष्य सब योगियों में भी केवल भोग होता है। हम सबको भोग योग्य कहते हैं, चाहे नीचे की योजना हो वे भोग योग्य है, ऊपर की योजना हो देवताओं की वे भोग योजना है, पर बीच में केवल यह मनुष्य ही इसे कहीं कर्म यही पर मनुष्य कर्म करता। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत घोर दुष्कर्म किए हैं और उसके मन में बहुत पापुक वृत्ति है, तो ऐसा जो व्यक्ति मरने के समय पर जो मरने के समय कैसे पुनर्जन्म होता है उसके साथ यह प्रश्न संपर्क है, तो मरने के साथ उसके सारे के आखिरी भाव उसके आखिरी संस्कार से बंद हो जाते हैं और वे उसके सूक्ष्म शरीर को उसके लिंग शरीर को उसके मनोरंजन को उस प्रकार का आहार दे देते हैं। मान लीजिए उसके जीवन में बड़ी लंबी वृत्तियां ही वह कुत्ते की ओर धारण करता है और कुत्ते के रूप में जन्म ग्रहण करता है। अब प्रश्न था कि यह तो कुत्ते की योनि में आया तो कुत्ता और मनुष्य मान लीजिए कि इसके बीच में 3 लाख योनियां है, कर्म 3 लाख योनियां है, तो अब यह जो कुत्ते की योनि में आया तो क्या 3 लाख योनियों को फिर से पार करके मनुष्य योनि में जाएगा या क्या करेगा? इसका उत्तर यह है कि उसको 3 लाख योनियां तब नहीं जानी पड़ेंगी। यह जो कुत्ते की योनि में आया है यह कुत्ते का शरीर नष्ट होगा और क्योंकि वह फिर से मनुष्य योनि में चला जाएगा, उसके जो अच्छे संस्कार है उन संस्कारों को पकड़ करके फिर आगे की वह यात्रा करेगा। पर अपने हीन संस्कारों का अत्यंत दुर्वृत्त संस्कारों का भोग करने के लिए उसे नीचे की योनि में आना पड़ेगा, यह सत्य है। जैसे हम पढ़ते हैं राजा भरत का उदाहरण, यही संस्थान करते हैं राजा भरत अंत में मरते समय उस हरि में शावक में हरि के छोटे से बच्चे में आसक्त हो गए थे, सोचते थे कि मैं यदि मर जाऊं तो कौन उसको देखेगा, इतनी आसक्ति हो गई कि ईश्वर चंद्र यह संबंध हो गया। और अब पढ़ते हैं उस आसक्ति के कारण राजा भरत को खरीद होकर के अगले जन्म में आना पड़ा, पर उस हरि के संस्कार अच्छे थे, वह यज्ञ भूमि में ही चलता रहता था जहां पर वेद मंत्रों का पाठ होता था और ऐसे ही वातावरण से वह घुमा करता था जहां पर ऋषि मुनि जब रहा करते थे, और यही वह हरिण देह छूटी कि वह राजा जो भरत था जो हरिण बना था वह जड़ भरत के रूप में उत्पन्न होता। यह कथा करते हैं मानो भोगी और उनको गई उतना वह क्षय कर लेता है, भोग उसका पूरा हो जाता है और उसके बाद वह फिर जड़ भरत के रूप में आता है। नहीं तो कारण कैसे बताएंगे? कितने बढ़िया बढ़िया कुत्ते देखे जो मेम साहब के साथ दूरे पर चिंता कर सकते हैं, कौन होंगे नहीं होंगे? कर्मों का शोध करने के लिए चले गए तो आपको निकला अच्छे ही सब तुम कुत्ते की समान हम जी करें, हम जी बैठी सुनेंगे, बढ़िया बिस्कुट खाने के लिए मिलेगा, मलाई मिलेगी। इस जीवन में कोई जतन नहीं करता है, उस जीवन में तो मेम साहब चुनेंगे, मलाई खिलाएंगे, प्यार करेंगे, ये योनियां आके भिन्नता कितनी है, कुछ तो बड़े अच्छे रहते हैं। यही होंगे स्वामी जी एक बार आए विवेकानंद जी, यह परंपरा है मैंने उनके वो जो भक्तों की परंपरा थी लगना, जब बिल्कुल स्थापित किया अमेरिका से लौटने के बाद दर्शक उन्होंने लगाया था, तो स्वाभाविक है कि यह सब जगह की समस्या है कि गाय बकरियां आकर के चलने लगती हैं, गाय बहुत परेशान करती थी आकर के, जैसे पहले पर यहां एक गाय बहुत परेशान किया करती थी आश्रम, एक गाय बहुत परेशान करती थी, बार बार आती थी चल जाती थी, स्वामी जी एक दिन कुपित हो गए, सिर्फ उनसे कहा करे तो पकड़ क्यों नहीं लाते, इतने लोग पकड़ते नहीं, एक दिन तो किसी प्रकार वो धारने लगे गाय तो उसे उसको पकड़ा और ले आए। अच्छा स्वामी जी कहा चल देख तो सही कितने दूर निकलता है, क्या जितना खाती है उतना दूर निकाले, स्वामी जो नहीं गए तो उन्हें अचानक मालूम नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने नमस्कार ऐसा किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा ही बस ऐसा निकाला तुम दिखाने चल कह के अगर इतने करता नहीं है ठीक है बहुत थोड़ा दूर है ज्यादा है नहीं किसानों में, फिर एक दिवस ने पूछा बाद में स्वामी जी आपने नमस्कार कर किया गाय, पहले लोगों ने फिर सोचा कि ठीक है गाय के प्रति एक भक्ति बुद्धि है स्वागत एक नमस्कार कर दिया,
सामने कुछ बोल नहीं रहे थे, पर जब रहा उसने शिष्य ने क्योंकि बहुत मुंह लगा शिष्य था इसलिए पूछने की हिम्मत नहीं कर सका, तो स्वामी ने कहा क्या बताऊं रे, जब मैं गया गाय के पास घूमने के लिए तो मैंने देखा कि अरे वो तो मेरे साथ पढ़ने वाले का बातचीत था, इसलिए मैंने नमस्कार किया, कहा कि भाई ब्राह्मण मानो अब मैं इस योनी में तो मैं दूं और तुम इस योनी में तो मैं दुआ जा, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा सब बाकी था। अब ये रिकॉर्ड है, इसका मतलब है कि ऐसे मनीषी हुए हैं जो देख लेते हैं। तो यह होता है अपने कर्मों का मन संस्कार भोग करने के लिए मनुष्य से जो या प्राप्त होती है सत्य या हम मानते हैं यह शास्त्रों में जो प्रमाण में, अब कोई कहेगा कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हो जैसे हम प्रयोगशाला में करते हैं यह सब संभव नहीं है। तो ये जैसे आनुमानिक ये सब प्रमाण होते हैं अनुमान प्रमाण तो ऐसे हो सकते हैं, तो स्वामी जी ने वह देखा था। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य मानने के बाद या तो देवलोक में चला जाए अपने अच्छे संस्कारों का भोग करने के लिए, या यदि संभव है उसे देवलोक की इच्छा नहीं है उसके भीतर कितने अच्छे संस्कार हैं तो कहता है नहीं मैं यहीं पर मनुष्य लोक में रहूंगा और मनुष्य जीवन में रह करके अपनी यही मुक्ति का पथ मैं जल्दी से जल्दी बना लूंगा। वह मनुष्य लोक में भी आ मैंने दो प्रकार के लोग, एक तो जिनके भीतर में अतिशय सात्विकता है जो मोक्ष से चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार जीवन के बंधनों को काट डालना चाहते हैं, जैसे मनुष्य बनेंगे मरने के बाद, और वे भी जो रजोगुण से संपन्न है जिनके उतने पुण्य नहीं कि वे देवलोक में चले जाएंगे, वे भी मनुष्य बनेंगे और अपना रास्ता प्रशस्त करेंगे, और बाकी लोग हैं जो दीन वृत्ति वाले हैं वे दूसरी योनियों में जा सकते हैं अपने संस्कारों का भोग करने के लिए। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत वेदांत की दृष्टि या ठीक खांसी सनातन दृष्टिकोण है या हिंदू धर्म का दृष्टिकोण है, और हिंदू धर्म क्या करना के सब आ जाते हैं, बौद्ध जैन सिख ये जितने भी भारत की मिट्टी में जितने धर्म उपजे ये सब हिंदू धर्म है, ये सब अलग अलग नहीं अलग अलग ये मत और पंथ हो गए हैं, पर इनका जो आधार है तात्विक आधार बिल्कुल एक ही है, बल्कि उसमें लगभग अलग अलग लगा हो यह सनातनी है यह शास्त्र है यह नानकत्य है यह शैव है यह लिंगायत है यह जैन है यह सिख है यह बौद्ध है, पर यह केवल एक लागत है वस्तुतः वह हिंदू धर्म ही है विराट हिंदू धर्म जो अपने कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत के द्वारा दावा करता है और सही दावा करता है कि हम जीवन की समस्याओं को समझाने में हम सक्षम उनका उत्तर दे सकते हैं। तो आप अगली बार देखेंगे कि पुनर्जन्म कैसे होता है उसकी प्रक्रिया क्या है ग्रंथों में है, और इस प्रक्रिया का आज का आजकल जो वैज्ञानिक ये सब चला हुआ है उसके साथ किसी प्रकार का तालमेल है क्या, वह कटना है वो वैज्ञानिक दृष्टि से या पुष्ट होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे व अंतिम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म पर कर्म पर अगले रविवार को। तो आइए ध्यान पाठ करें
नाम बड़ा रास्ता देखते देखते यह विलंब कार्यक्रम प्रारंभ करने में हुआ, हम लोग श्रीमद् भागवत के उस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं जहां पर देवर्षि नारद राजा प्राचीन बर्वी को पुनर्जन्म के संबंध में उपदेश देते हैं। यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उस पर पिछले दो प्रवचनों में हमने विचार किया, सैद्धांतिक पक्ष हमने लिया, आधुनिक विज्ञान की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को आपके समक्ष रखा और यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि संसार में मनुष्य मनुष्य में जो वैषम्य है उस वैषम्य की व्याख्या इस विज्ञान के बल पर नहीं की जा सकती, या जिसे हमने कहा कि यदि जीवन को केवल हम आकस्मिक ही माने तो इससे इस वैषम्य की व्याख्या नहीं हो सकती। या दूसरे धर्म जिस प्रकार मानते हैं कि केवल यही एक जन्म है, पुनर्जन्म नहीं है, पीछे जन्म नहीं था, आगे जन्म नहीं रहेगा, तो केवल एक जन्म का सिद्धांत भी इस वैषम्य को हमारे समक्ष सुलझा नहीं पाता है। यदि ईश्वर ने इस विषमतापूर्ण संसार की सृष्टि की है तो प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर इतना पक्षपाती है? एक मनुष्य को वह प्रारंभ से ही मानो अत्यंत ऐश्वर्य में रखता है और दूसरे व्यक्ति को दो जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। परिश्रम तो दोनों करते हैं, तो यह जो विषमता है यदि ईश्वर के द्वारा सृष्ट हुई है तो फिर वह ईश्वर कम से कम दयालु तो नहीं हो सकता, वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। तो इस प्रकार उन धर्मों में इस वैषम्य की कोई व्याख्या नहीं। पर हमने कहा कि भारत में इस पर बड़ा गंभीर चिंतन किया गया और इस सिद्धांत पर ये मननशील ऋषि उपनीत हुए कि जब तक हम जीवन की परंपरा को स्वीकार नहीं करते तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो मनुष्य का केवल यही एक जन्म नहीं है, पीछे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, आगे और भी हमें मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा? जब तक वह जो हमारे भीतर की पूर्णता है प्रकट नहीं हो जाती। हमारे भीतर में अनंतता है और जब तक हम अपने उस अनंत स्वभाव को व्यक्त नहीं कर देते तब तक यह जीवन का क्रम चलता ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यह जीवन का लक्ष्य है। वेदांत की दृष्टि से हमने जीवन का यह लक्ष्य माना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में यह पूर्णता है, पर यह पूर्णता अभी छिपी है, यह लेटेंट है। तो यह जो पूर्णता हमारे भीतर में लेटेंट है, छिपी हुई है, इसी को हमें काइनेटिक करना है, इसको बाहर प्रकट करना है, अभिव्यक्त करना है। और जिस क्षण हम अपनी इस पूर्णता को प्रकट करने में समर्थ होते हैं उसी क्षण हम ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार करता हो जाते हैं, हमारे भीतर की वह दिव्यता पूर्ण मात्रा में प्रकट हो जाती है, हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह वेदांत की धारणा है। और इसलिए पिछली चर्चा में हमने विकासवादी और वेदांतवादी इन दोनों के वार्तालाप के माध्यम से जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयास किया और यह भी दिखाया कि विकासवाद में न्यूनताएं कहां पर हैं, कमियां कहां पर हैं, दोष कहां पर हैं। कुछ प्रश्न हमने उठाए, उन प्रश्नों को विकासवादी उत्तरित नहीं कर पाता है, जबकि वेदांती इन प्रश्नों का सक्षम उत्तर देता है, विज्ञान के आधार के बल पर ही। विज्ञान से हट करके नहीं जाता, युक्ति से हट करके नहीं जाता, तर्क से हट करके नहीं जाता, वह तर्क और युक्ति के बल पर, विचारणा के बल पर इन्हीं प्रश्नों का सक्षम उत्तर देता है। और यह हमने पिछली बार देखा और पिछली बार की चर्चा का सार यह था कि जहां पर विकासवादी ठीक जीवन की प्रक्रिया को समझा नहीं पा रहा है, वह अमीबा से लेकर के मनुष्य तक जीवन के विकास की गाथा को कह तो देता है परंतु उसका समुचित उत्तर वेदांत के कक्ष में हमें प्राप्त होता है। एक वेदांतवादी इन समस्त गुत्थियों का उत्तर हमें दे देता है कि जीवन की प्रक्रिया किस लिए बह रही है, क्यों यह जीवन की धारा बह रही है। तो जितना उत्तर वह दे सकता है उतना उत्तर वह देता है और ये सारे के सारे उत्तर तर्क की कसौटी पर कसे होते हैं। इन उत्तरों में कहीं पर कोई कल्पना नहीं होती है, पूरा रीजन होता है, उसके भीतर में युक्ति होती है, विचारणा होती है, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा। तो इसलिए जो पिछली चर्चा हमने की थी उसमें यह अंतर हमने अच्छी तरह से देख लिया कि आज का विकासवादी किस प्रकार वेदांतवादी की ही बात को भिन्न प्रकार से कहने लग गया है। हमने देखा कि जिस समय डार्विन ने अपने विकासवाद की घोषणा की तो उन्होंने विकासवाद को किस ढंग से हमारे समक्ष रखा, और आज के जो विकासवादी हैं, जूलियन हक्सले हैं, इन लोगों का क्या कहना है। पहले का विकासवादी मनुष्य को बिल्कुल कठपुतली मानता था, मानो यंत्र मानता था प्रकृति के हाथों, वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। यह जो विकास की परंपरा चल रही है, यह जो इवोल्यूशन का प्रवाह बह रहा है, मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। पर अब आज का विकासवादी ऐसा नहीं मानता। आज का विकासवादी यह कहता है कि मनुष्येतर योनियों तक यह जो विकास की परंपरा है वह तो ऑर्गेनिक होती है, वह मैकेनिकल होती है, पर मनुष्य में आकर के यह विकास यांत्रिक नहीं रह जाता, यह विकास मेंटल हो जाता है, मानसिक हो जाता है। तो जब तक हम मनुष्य तक नहीं आए हैं तब तक जो भिन्न भिन्न योनियों में से हमारा गमन होगा तो विकास की यह प्रक्रिया पूरी तरह से यांत्रिक होगी, केवल ऑर्गेनिक होगी, केवल बायोलॉजिकल होगी। पर जिस समय यह विकास मानो मनुष्य में आ जाता है तब यह जो विकास की प्रक्रिया है पूरी तरह से यांत्रिक न होकर के वह मानसिक अधिक होती है, और जैसा कि जूलियन हक्सले कहते हैं इट इज साइको सोशल, यह मनोसामाजिक है। इसका भी अर्थ पिछली बार हमने स्पष्ट किया था। इसका तात्पर्य है कि वे भी अब एक लक्ष्य को स्वीकार करने लगे हैं। पहले का विकासवादी किसी लक्ष्य को नहीं मानता था, पर आज का विकासवादी कहता है कि यह जो प्रवाह बह रहा है विकास का, इसका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जूलियन हक्सले कहते हैं इट टेंड्स टू फुलफिलमेंट एंड ग्रेटर फुलफिलमेंट, यह पूर्णता की ओर और अधिक पूर्णता की ओर जा रहा है। अब यह जो पूर्णता शब्द है इसका हम अर्थ किस प्रकार से करें, इसको हम कैसे समझें, तो हम तो यही कहेंगे कि यह जो पूर्णता की बात, फुलफिलमेंट की बात जूलियन हक्सले कहते हैं, हम वेदांत की दृष्टि से इस फुलफिलमेंट शब्द को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। वेदांत की दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? पूर्णता। यह पूर्णता की ओर और अधिक पूर्णता की ओर विकास जा रहा है, और वेदांति कहता है कि एक दिन वह स्थिति आ जाएगी जिस दिन इसी जीवन में हम उस ब्रह्म को देख लेंगे, सत्य की अनुभूति कर लेंगे, आत्मदृष्टा हम हो जाएंगे, वह जो वृत्त शुरू हुआ था उस अमीबा से उस वृत्त पथ को पूर्ण कर लेंगे और हम मानो जीवन की प्रक्रिया को पूरी तरह से जी लेंगे। यह वेदांति का उत्तर था। तो उस क्रम में हमने उन गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया, और आज क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि यह जो पुनर्जन्म जो सिद्धांतिक रूप से हमारे समक्ष आता है, जिसका हमने विवेचन सैद्धांतिक दृष्टि से किया है, तो यह जो पुनर्जन्म है उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है? कि यह जो होता है, मनुष्य का जन्म होता है, तो जन्म की क्या प्रक्रिया हो सकती है, उस प्रक्रिया के संबंध में आज विवेचन करेंगे शास्त्रों के बल पर। जैसा हमने कहा कि ये जो प्रमाण है, तीन प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण कहते हैं ज्ञान के उपाय को, ज्ञान के तरीके को। प्रमा का मतलब है ज्ञान, और प्रमाण कहते हैं वह तरीका, वह उपाय जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिले। तो तीन प्रमाण माने गए हैं, तीन प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की जाती है न्याय ग्रंथ में, लॉजिक की किताबों में। और ये तीन प्रमाण कौन है? एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक ज्ञान का तरीका है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसे मैं अपनी आंखों से देखता हूं, अपने कान से सुनता हूं, अपनी नाक के द्वारा जिसका मैं घ्राण लेता हूं, रसना से स्वाद ग्रहण करता हूं, और अपने हाथ से स्पर्श करके देख लेता हूं। ये जो पांच मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मुझे ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। हम कहते हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा अपनी आंख से। तुम कहते हो मोहन नहीं आया था, अरे मैंने बाजार में उसको अपनी आंखों से टहलते देखा, यह मानो प्रत्यक्ष ज्ञान। अरे तुम कहते हो कि मोहन नहीं आया था, वह तो मैं उसकी आवाज में कान से सुन रहा था, वह तो किसी दूसरे व्यक्ति से बतिया रहा था, और तुम कैसे कहते हो कि मोहन नहीं आया था? यह प्रत्यक्ष ज्ञान, कान से मैं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता हूं। तो तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, इसका मतलब ये मेरी ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान लाकर के मेरे समक्ष रखती हैं, मैं उस ज्ञान को इनके माध्यम से प्राप्त करता हूं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा एक प्रमाण है जिसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण, अनुमान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे यह जो अनुमान प्रमाण है वो इसका जो आधार है वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। जैसे कहीं पर आग लगी, हम धुआं उड़ता हुआ देखते हैं, तो अगर कहीं केवल धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं पर आग लग गई है, यह अनुमान से हम कहते हैं। और अनुमान कैसे किया? क्योंकि हमने पहले कहीं पर जब आग लगी, प्रत्यक्ष प्रमाण है यह अनुमान प्रमाण। और जो तीसरा प्रमाण है उसको कहते हैं आप्त प्रमाण या शास्त्र प्रमाण, माने शास्त्र जिसके संबंध में कहे या जिसका ज्ञान हमें शास्त्र के माध्यम से होता है। आप्त प्रमाण का तात्पर्य कि कोई जो अनुभवी पुरुष है वह हमें बता देते हैं, उनके माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान पाने का जो तीसरा तरीका है उसको आप्त प्रमाण कहते हैं, या उसे शास्त्र प्रमाण के नाम से भी पुकारा गया है, या शास्त्र प्रमाण। तो यह जो यहां पर पुनर्जन्म की व्याख्या हमने की, तो यह किस प्रमाण के बल पर होगी? क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में यदि हम चर्चा करें और विचार करें, ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो इसका प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मरता है वह आकर के कैसे बताएगा। पर कुछ लोगों की गाथाएं ऐसी अंकित की गई हैं कि बाहरी दृष्टि से वह मनुष्य मर गया, क्लिनिकली मर गया, एक डॉक्टर की दृष्टि से वह मर जाता है और कुछ समय तक बेहोशी की अवस्था में रहता है और 3-4 घंटे के बाद फिर होश में आ जाता है और वह बताता है कि मैं कहां कहां गया था, मैं दिव्य लोक में गया था। किताब है लाइफ बिफोर लाइफ एंड लाइफ आफ्टर लाइफ, ये 2 पुस्तकें, छोटी सी है जिसको पेपर बैक एडिशन कहते हैं, पर बहुत बढ़िया किताब है। और ये दोनों किताबें लिखी गई हैं बाहर के लोगों के द्वारा जिनके धर्म में पुनर्जन्म के लिए कोई स्थान नहीं है, और उन्हीं स्थानों की घटनाएं दी गई हैं जहां पर लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे देशों की घटनाएं यहां पर हैं जहां पर व्यक्ति कुछ समय के लिए बिल्कुल मर गया है, डॉक्टर और चिकित्सक की दृष्टि से, परंतु वह कहीं पर चला जाता है, 3-4 घंटों के बाद फिर से होश में आता है, तो फिर उसके बाद बताता है कि मैं तो कहीं चला गया था जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश था, मुझे बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा था, और मैं फिर से लौट करके आता हूं तो मैं अपनी देह को पड़ी हुई देखता हूं, मुझे उसमें घुसने की इच्छा नहीं होती है, परंतु मानो कोई जबरदस्ती मुझे उस शरीर में खेल देता है, जाने के लिए मुझे बाध्य कर देता है, और फिर उसके बाद मैं होश में आ जाता हूं। तो ये घटनाएं भारत की नहीं, भारत की ये घटनाएं होती तो कहा जा सकता था कि भारत में तो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए ठीक है कि यहां का व्यक्ति इस प्रकार कुछ सोच भी सकता है। पर बाहर के देशों में जहां पर पुनर्जन्म पर कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, ऐसे लोग जो हिंदू धर्म के विश्वासी नहीं है, उन लोगों की ये अनुभूतियां वहां पर संकलित हैं लाइफ बिफोर लाइफ में। तो इससे मालूम पड़ता है कि ऐसी घटनाएं तो होती हैं। तो वह अनुमान प्रमाण की ओर हम जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो बहुत कठिन है, पर अनुमान प्रमाण के द्वारा यह जान सकते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति हैं इस प्रकार की चर्चा करते हैं, ये तो कोई गलत बात तो नहीं कह सकते हैं। और जितने भी ऐसी घटनाएं प्राप्त होती हैं उनमें एक प्रकार की मानो समानता है, सभी एक प्रकार की बात कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा था जिस समय मैं अपने शरीर से निकला, उस समय मुझे बड़ा कष्ट होता था, बड़ी पीड़ा होती थी, और जब मैं अपने शरीर में फिर से आ गया तो पीड़ा का उपशम हो गया। कुछ घटनाएं ऐसी निकली जो शरीर से बाहर निकल करके अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं, फिर से शरीर में नहीं आना चाहते हैं, पर जबरदस्ती उन्हें शरीर में आना पड़ा, तो शरीर में आना उनके लिए कष्टदायक है और शरीर से बाहर जाना उनके लिए आनंददायक है, ऐसी घटनाएं। तो ये घटनाएं हैं, इनके द्वारा हम अनुमान प्रमाण कहेंगे, ये हमें अनुमान प्रमाण की ओर घटनाएं ले जाती हैं। और तीसरी प्रमाण की बात जो हमने कही वह है जिसे हमने कहा कि शास्त्र प्रमाण, आप्त प्रमाण,
अनुभवी पुरुषों का प्रमाण आप तो कहते हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने तत्व को देख लिया है, जो पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं, जिनके भीतर में किसी प्रकार की कामना और वासना नहीं है, उनको हम आप तो कहते हैं। और ऐसे पुरुष जो बात कह जाते हैं अपनी अनुभूति के बल पर, उस बात को भी हम प्रमाण के रूप में लेते हैं, तो वह आप तो प्रमाण है या शास्त्र प्रमाण है। तो ये तीन प्रकार के प्रमाण हुए, और इन तीन प्रकार के प्रमाणों के माध्यम से हमारे समक्ष यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत वह आता है। तो कोई कहे क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो कहेंगे भाई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, पर अनुमान प्रमाण, और यह जिसे आगम प्रमाण कहो या शास्त्र प्रमाण कहो या जिसे तुम आप तो प्रमाण कहो, ये दो प्रकार के प्रमाण तो अवश्य है इस पुनर्जन्म के संबंध में। तो यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जिसके सैद्धांतिक पक्ष को हमने पिछली चर्चा में देखा था, आज उसके व्यवहारिक पक्ष को देखने का प्रयास करें कि कैसे होता है। जहां तक यह जो मनुष्य जीवन तक या मनुष्य योनि तक जब तक प्रवाह नहीं आया है, तब तक तो वह मैकेनिकल है। यह जो विकास का प्रवाह है वह मैकेनिकल है, यांत्रिक है, पर एक बार मनुष्य योनि में प्रवेश करने के पश्चात वह मैकेनिकल नहीं रह जाता, वह केवल ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल नहीं रह जाता, वह मानसिक हो जाता है। यह बात तो आज के वैज्ञानिक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, और वेदांती ने तो बहुत पहले स्वीकार किया है। वह तो कहता ही है कि मनुष्य जीवन में आकर के विकास का प्रवाह मानसिक ही होता है। यह इसका मतलब क्या हुआ कि यह मनुष्य पुरुषार्थ करने में समर्थ होता है। ऐसा नहीं कि यह प्रकृति के हाथों में कठपुतली है, ऐसा नहीं कि हम केवल भाग्य के द्वारा बंधे हुए हैं, परंतु हमारे भीतर में कुछ स्वतंत्र रूप से करने की भी क्षमता होती है, और उस क्षमता को मनुष्य जीवन जो व्यक्त करता जाता है, त्यों त्यों उसके भीतर विकास साधित होता जाता है। और यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको हम कहेंगे कि मनुष्य पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि फ्री विल है, अथवा वह बंधा हुआ है, डेस्टिन्ड है। यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य के भीतर में स्वतंत्र इच्छा शक्ति है या वह पूरी तरह से बंधा हुआ है, यांत्रिक है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर हम और कभी देने का प्रयास करेंगे। पर इतना ही यहां पर कह दें कि यह जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति या जिसे हम फ्री विल कहा करते हैं और डेस्टिनी कहते हैं, तो क्या मनुष्य कर्म करने में बंधा हुआ नहीं है? ठीक है, हमने पिछली चर्चा में देखा कि मनुष्य मनुष्य का अंतर किस लिए होता है। हमने कहा था कि अमीबा मानो निकल रहे हैं, मानो अनंत अंत अमीबा। जैसे हम एक उदाहरण, अत्यंत स्थूल उदाहरण बात को समझने के लिए, कि हम ढेरी में से सरसों के दाने निकाल करके मानो ऐसे फेंकते हों, सतत जैसे जल का प्रवाह सतत बह रहा है। हम अभी देख रहे हैं जल के प्रवाह को, यहां पर एक बिंदु था जल का, वह चला गया, दूसरा बिंदु आ गया, चला गया, तीसरा बिंदु आ गया, सतत चल रहा है। इसी प्रकार मानो कितने अमीबे हैं, कोटि कोटि अमीबा हैं, और जीवन के प्रवाह में सारे अमीबे चले आ रहे हैं, तो जो पहले गए हुए अमीबे हैं उनका विकास अधिक साधित होता है, ये पीछे के आए हुए कम, धीरे धीरे उनके भीतर का विकास कम दिखाई देता है। तो इसका हमने कहा था वैषम्य का जो विशदीकरण है, वैषम्य की जो विवेचना है इसके बल पर की जाती है, यह एक कारण है। और दूसरा कारण हमने कहा था कि जो व्यक्ति है वह अपने भीतर में विकास के लिए अधिक प्रयत्नशील हो जाता है, उसका विकास अधिक साधित होता है। पिछली चर्चा में इस प्रश्न को उठाया था कि कोई कहे कि जब मनुष्य के भीतर की पूर्णता एक न एक दिन प्रकट होने ही वाली है, तो हम क्यों साधना करें? फिर तो एक न एक दिन प्रकृति का यह जो प्रवाह है, विकास का यह जो प्रवाह है, मनुष्य के भीतर में जो पूर्णता है उसे व्यक्त कर ही देगा। बिल्कुल ठीक है, कर ही देगा, अवश्य कर देगा, पर मालूम नहीं कितने लाखों लाखों वर्ष लग जाएंगे, मनुष्य रुक नहीं सकता है। हमारे भीतर में शीघ्रता की वृत्ति रूढ़ है, हम कहीं पर रुकना नहीं चाहते हैं, हम जल्दी करना चाहते हैं, हमारे भीतर में शीघ्रता की भावना रूढ़ है, जैसा मैंने कहा, और इसीलिए हम इस विकास की गति को द्रुत कर देना चाहते हैं। यह साधना पक्ष है, और इसी बात को स्वीकार करता है विकासवादी। जूलियन हक्सले कहते हैं कि यदि हम अपनी मनोवृत्तियों को सुसंबद्धित कर लें, सुसंगठित कर लें, और उनको ठीक ठीक मैनिपुलेट करें, बाय प्रॉपरली मैनिपुलेटिंग द फैकल्टीज ऑफ आवर माइंड, इट इज पॉसिबल। क्या क्या पॉसिबल है?